ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गिर्भिर्वृष्णम् एडयन् ब्रह्मा भवश्च तैत्रत्य मुनिर्भिः नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकम् गिर्भिर्वृष्णम् एडयन् धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ब्रह्मा चतुर्मुख सर्वोच्च देवता भवाचा तथा शिवजी तत्र वहां ऐत्य आकर मुनि भी मुनियो नारद आदि भी नारद इत्यादि के साथ देवै तथा इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवताओं के साथ सानुचरै अपने अपने अनुयायियों के साथ साकम साथ गिर भी अपनी स्तुतियों से वृषणम किसी को भी वर देने वाले भगवान एडयन प्रसन्न किया। अनुवाद। ब्रह्मा तथा शिवजी नारद देवल तथा व्यास जैसे महामुनियों एवं इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे जहां सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां की। तात्पर्य द्वौभूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च। पद्म पुराण। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर, और इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। असुर होने के कारण कंस लगातार भगवान या उनकी माता देवकी को मार डालने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता था। इस तरह वह भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु भक्तगण अनुकूल रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देवः। ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन का कार्य दिया गया है, फिर भी वे भगवान के स्वागत करने स्वयं आए। भव अर्थात शिव जी भगवान के नाम का कीर्तन करके सदा हर्षित होते हैं। और नारद को तो कहना ही क्या, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम है। नारद मुनि सदैव भगवान का गुणगान करते रहते हैं और उनका कार्य है पूरे विश्व का भ्रमण करके भक्त की खोज करना या किसी को भक्त बनाना। नारद की कृपा से शिकारी भी भक्त बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने तोषणी टीका में लिखा है कि नारद आदि शब्द का अर्थ है नारद तथा देवताओं के साथ सनक तथा सनातन मुनि भी थे, और वे सभी अपनी बधाई देने और भगवान का स्वागत करने आए थे। यद्यपि कंस देवकी को मारने की योजना बना रहा था, किंतु वह भी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षांस्तत् जन्म। ओम अज्ञानतमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय। हरे कृष्णा। आज सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दशम स्कंद तक हम पहुंच गए हैं, हमारा परम सौभाग्य है। और दशम स्कंद में जिसो कि भागवतम के 10 विषय हैं और भगवान श्री कृष्ण को आश्रय बताया गया है, बाकी सब 9 विषय श्री कृष्ण का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। और इस दशम स्कंद में दूसरा अध्याय है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। तो कृष्ण देवकी के घर में प्रकट हो गए। इससे पहले षडगर्भ असुर प्रकट होते हैं देवकी के घर में और कंस एक एक करके सबका वध करता है। और फिर भगवान योग माया को आज्ञा देते हैं कि जब सातवां गर्भ अनंत शेष प्रकट होते हैं कि आप इनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए, तो योग माया वो सेवा करती हैं। और फिर भगवान उसके बाद वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित होते हैं, फिर देवकी के गर्भ में आते हैं। और जैसे ही कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं, पूरा कंस का जो कारागार है प्रकाशमय हो जाता है और देवती इतने आनंदमय हो जाती है और देवती के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। कंस से देखकर बहुत डर जाता है, उसने देवकी को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था और उसको विश्वास हो जाता है कि मेरी मृत्यु अब आने वाली है और उसको पता चल जाता है कि अब देवकी के घर में साक्षात भगवान आ गए हैं। तो फिर वो विचार करता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मैं देवकी का वध कर दूं? अगर देवकी का वध करता हूं तो कंस हालांकि असुर था लेकिन वैदिक संस्कृति जानता था, बोले देवकी एक स्त्री है, दूसरा मेरी बहन है, तीसरा गर्भवती है, चौथा कारागार में है, अगर ऐसी स्थिति में मैं इसका वध करूंगा तो कोई भी नहीं मानेगा कि कंस बहुत वीर है, बल्कि आने वाले कई समय तक मेरी निंदा होती रहेगी, मेरे सारे ऐश्वर्य, मेरा जीवन सब कुछ मेरा समाप्त हो जाएगा, तो ये तो देवकी को मारना ठीक नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, प्रतीक्षा करते हैं। और उनको ये भी मालूम था कि स्वयं विष्णु देवकी के गर्भ में हैं और विष्णु अपनी शक्ति को कम तो करेंगे नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। प्रभुपाद भी यहाँ श्लोक के तंत्र लिख रहे हैं, प्रतीक्षा तत् जन्म, मैं उसके जन्म की प्रतीक्षा करता हूँ। अब ऐसा कर तो लिया उसने, लेकिन अब कंस पूर्ण रूप से हमेशा कृष्ण के बारे में सोचने लगा। जहां वो जाता था उसको लगता था कि कृष्ण उसकी मृत्यु करने वाले आ रहे हैं, है ना। तो क्या करता था, वो सिंहासन पर अपने कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे या कहीं भी रहते हुए, खाते सोते घूमते हुए कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता था। हर जगह उसको भगवान के दर्शन होते थे, है ना, भय से, है ना। कंस कृष्ण भावना भावित हो गया था, दूसरे शब्द में कंस कृष्ण भय भावना भावित हो गया था, पूरा पूरा फियर में, कंप्लीटली कृष्ण कॉन्शियस, 24 घंटे केवल कृष्ण के बारे में सोचता था, है ना। दूसरे शब्दों में अपने सर्वव्यापक, क्योंकि कृष्ण तो सर्वव्यापक हैं और हर जगह उसको नजर आ रहे थे, जो सौभाग्य बड़े बड़े योगियों को और बहुत प्रेमी भक्तों को प्राप्त होता है, वो कंस हर जगह भगवान के दर्शन कर रहा था, लेकिन क्या, अब विरोधी भाव में, अनफेवरेबली, अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते हुए कंस प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया था। और इस प्रकार से जब कंस कृष्ण भावना भावित हो गया, तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में मुख्यतः दो विषयों की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला विषय प्रभुपाद लेते हैं, दो भूत सर्गो लोकस्मिन देव असुर एव च, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर, और दोनों में बहुत भारी अंतर है। असुर भी कृष्ण भावना भावित हो गए जैसे कि कंस, और भक्त लोग भी होते हैं कृष्ण भावना भावित, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो भागवतम के सप्तम स्कंद में पहले अध्याय में, जिसका नाम है समदर्शी भगवान, और उसमें छठे स्कंद के बाद, जब छठे स्कंद में भगवान ने इंद्र की सहायता की, तो परीक्षित महाराज सप्तम स्कंद के प्रारंभ में ही पूछते हैं कि भगवान पार्शियलिटी क्यों करते हैं, देवताओं का साथ देते हैं और असुरों के विरोध में रहते हैं, सभी भगवान की संतान है तो उनको देवताओं का फेवर तो नहीं करना चाहिए। तो नारद सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया, नहीं, भगवान प्रकृति के तीन गुणों के अधीन नहीं है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण होता है ना। कोई हमारी प्रशंसा कर दे वो हमारा मित्र बन जाता है, कोई हमारी आलोचना कर दे वो हमारा शत्रु बन जाता है, ऐसा क्यों होता है, मिथ्या अहंकार के कारण। लेकिन भगवान तो अद्वैत तत्व है, भगवान का कोई शरीर तो है नहीं, भगवान स्वयं आत्मा है, साक्षात सच्चिदानंद विग्रह है, तो उनको वो प्रकृति के तीन गुणों से परे हैं, तो उनके लिए देव और असुर दोनों समान हैं। और फिर नारद मुनि जी ने, सॉरी क्षमा करें, सुखदेव गोस्वामी जी ने एक प्रसंग का वर्णन किया कि राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी के हस्तिनापुर दरबार में, और जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, जो शिशुपाल निरंतर नॉन स्टॉप भगवान को गालियां देता था, है ना, बिल्कुल। और भगवान ने फिर उनका वध किया, तो पूरे सभा में शिशुपाल की आत्मा भगवान के दिव्य देह में जाकर मिल गई। तो युधिष्ठिर जी बड़े चकित हो गए, ऐसा व्यक्ति जो बचपन से गाली दे रहा है, इतना वैरी आपका शत्रु, उसको इतनी परम गति प्राप्त हो गई जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं हो सकती। तो फिर नारद मुनि जी ने इसकी व्याख्या की कि भगवान की भक्ति की क्या महिमा है। और नारद मुनि जी ने बताया कि कृष्ण इतने पूर्ण हैं कि उनकी अगर कोई प्रशंसा करे तब कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई आलोचना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कृष्ण जब भक्तों को वरदान देते हैं या उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं, उनको अपना कोई लाभ नहीं है, भक्तों के लाभ के लिए। और अगर भक्तों को वो प्रताड़ित करते हैं तो ये नहीं कि अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, उनके लाभ के लिए। भक्तों की सराहना भी सुनते हैं उनके लाभ के लिए, और अभक्तों की आलोचना सुनकर उनको दंड भी देते हैं उनके लाभ के लिए। कृष्ण को कोई मिथ्या अहंकार नहीं है, इसलिए कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उनकी आलोचना करे या वो करे। वास्तव में तो कृष्ण ये देखते हैं ये व्यक्ति मेरी आलोचना कर रहा है, वो कृष्ण को गाली दे रहा है, कृष्ण ये हैं, कृष्ण वो हैं, कृष्ण ये हैं। तो कृष्ण ये नहीं देखते मेरी आलोचना कर रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कृष्ण ये देखते हैं कितनी बारी मैंने इसने नाम लिया, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, मेरा नाम ले लिया इसने, ये कोई साधारण जीव नहीं है, अब इसको मुक्त करना ही चाहिए। एक बारी बर्कले में भक्तों ने मंदिर खोला, एक सेंटर खोला, तो जैसे कि होता है जहां जहां इस्कॉन का सेंटर खुलता है साधारणतया आसपास के पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। तो पड़ोसी इतने परेशान हो गए कि मंदिर के अपोजिट सड़क में एक मकान वाले ने अपने गेट के बाहर इस्कॉन और हरे कृष्णा भक्तों की आलोचना करते हुए बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया, एकदम जो भी आते जाते सब देखे। और बर्कले में रथ यात्रा थी, प्रभुपाद आ रहे थे, भक्त लोग बड़े चिंतित थे, प्रभुपाद ने इसको देख लिया तो हमें डांटेंगे, एयरपोर्ट से लेने गए, सबने स्ट्रैटेजी बना ली, इस रोड से लेके नहीं आना, घुमा के लेके आएंगे, तो पूरी स्ट्रैटेजी तैयार थी। जब वहां पहुंचे घुमाने लगे तो वहां बोला सड़क का काम चल रहा था, वहां जा ही नहीं सके, उसी रोड से जाना पड़ा। जब उस रोड से जाने लगे तो भक्तों ने प्रभुपाद का ध्यान कहीं और करने, प्रभुपाद देखिए कितने सुंदर पेड़ हैं, कितना सुंदर वो है, प्रभुपाद ने वो भी देखा और वो भी देख लिया, प्रभुपाद कहला वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पूरे बर्कले में या यूएस में एक ही ऐसा मकान है जिसने दरवाजे के बाहर कृष्ण का नाम लगाया हुआ है। ये है, तो प्रभुपाद ने ये देखा। और भगवान भी यही देखते हैं कि किसने कितनी बारी कृष्ण का नाम लिया। वैसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी कहते हैं कि कृष्ण की निंदा करना या भक्तों की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है, और जो कोई कृष्ण के इससे द्वेष करता है, भगवान गीता के 16वें अध्याय में बोलते हैं त्वान हम दृष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिशामि अजस्रम अशुमान आश्रम एव योनिषु। मैं ऐसे व्यक्ति को जो मेरी निंदा करता है, मुझसे द्वेष करता है, मैं उसको आश्रय योनियों में डाल देता हूं। आश्रय योनि मापन्ना मूड़ा जन्मनि जन्मनि, जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो कई कई योनियों में, आसुरी योनियों में रहता है, नरकों में रहता है, और फिर निम्न योनियों को प्राप्त होता है ना। तो भगवान का ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत अच्छा आज बता रहे हैं, कांस भी कृष्ण भावना भावित हो गया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि भगवान की निंदा करने वाले जीवों को दो श्रेणियां हैं, एक जो कि निंदा करते करते भगवान में पूरे लीन हो जाए, जैसे कंस या शिशुपाल पूरे एब्जॉर्ब हो गए भगवान की निंदा करते हुए, कृष्ण भावना भावित हो गए, अगर इस स्तर तक अपनी निंदा को ले आ सकते हो नो प्रॉब्लम, वैसे ले जाओ। हालांकि रूप गोस्वामी जी हमारे आचार्य ग्रंथ बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान इसे प्रसन्न नहीं होते, इससे ज्यादा शायद आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन किसी ने ठान ही रखी है मैंने भगवान की निंदा करनी है तो करनी है, तो इस समय तक करें, जो बीच में फंस गया कंटिन्यूस निंदा नहीं कर सकता वो फंस गया फिर। उसकी कोई गति नहीं है, वो फिर नरकों में जाएगा, है ना। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिंतन माशतम परम भम अजानता माम भूतम महेश्वरम। उसकी हर क्रिया मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसी आसुरिम चैव प्रकृति मोहनिम श्रुता। उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, कोई आशाएं पूरी नहीं होगी। और प्रभुपाद कहते हैं इन बड़े बड़े असुरों से तो ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं आज के मायावादी और ये वैज्ञानिक लोग जो बोलते हैं भगवान है ही कहां, भगवान है ही नहीं, वो भगवान के देखो मानते नहीं। कंस एटलीस्ट कृष्ण की पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज कर रहा था, कृष्ण है और सब जगह कृष्ण के दर्शन कर रहा था, कृष्ण को वास्तविक मान रहा था। लेकिन ऐसे बड़े बड़े लोग हैं प्रभुपाद कह रहे हैं जो भगवत गीता से ही कृष्ण को उड़ा देते हैं, और जो बड़े वैज्ञानिक बोले है ही भगवान है कहां पे, है ना, और बड़े बड़े मायावादी बोले भगवान तो है ही नहीं, जैसे हिरण्यकश्यप भी पूछ रहा था भगवान कहां है, किधर है भगवान, प्रहलाद से पूछा जिनको तुम जगदीश्वर बोलते हो मेरे अलावा किसी को जगदीश्वर मानते हो, कहां है तुम्हारा जगदीश्वर, प्रहलाद ने बोला सब जगह है, बोले कहां यहां पे भी है, बिल्कुल है। प्रहलाद को नरसिंह भगवान दिखाई दे रहे थे साक्षात, भगवान प्रहलाद बड़े आत्मविश्वास से बोले हाँ ये रे खड़े हैं यहां पे, बोले आह जोर से हंसा हटास है यार भगवान खंभे में। तो इस प्रकार से आजकल हर कोई ये प्रश्न पूछ रहे भगवान कहां है, और ये प्रश्न पूछने के लिए आपको असुर होने की आवश्यकता नहीं है, है ना, हर कोई पूछता है, असुर तो पूछता ही पूछता है भगवान कहां है, कहां है भगवान। इस संसार में जो लोग दुख पा रहे हैं वो भी पूछते हैं कहां है भगवान, कहां गया आपका भगवान, है ना, मंदिरों में आके भगवान को गाली दें कहां है तू, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कहां है भगवान, है ना, जिसको दुख आ रहा है वो भी ये पूछते हैं भगवान कहां है, और जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो भी पूछते हैं भगवान कहां है, बताओ आजकल कौन सा भगवान चल रहा है उसके पास जाऊं मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, कौन सा मंदिर सिद्ध मंदिर है कहां है भगवान, है ना, और भक्त भी यही पूछ रहे हैं कहां है भगवान, क्यों कहां मैं जाके सेवा करूं, है ना, भगवान भक्त लोग विरह में है किधर है भगवान, किधर है भगवान, है ना। हे राधे व्रज देवी के छ ललिते हे नंद सुना कुतः, और प्रहलाद महाराज भी ढूंढते थे कहां है भगवान, उनको लगता था कभी भगवान आ रहे हैं उनको गोद में उठा रहे हैं तो बड़े हंसते थे, और कभी लगता था भगवान चले गए तो रोना शुरू कर देते थे, वो भी ढूंढ रहे थे कहां है भगवान। तो हर कोई ढूंढ रहा है कहां है भगवान, है ना, लेकिन सबसे अच्छा कौन ढूंढ रहा है, भक्त लोग, है ना, कहां है भगवान, ताकि हम उनकी सेवा करें पूर्ण रूप से कृष्णा भना भावित होकर। तो प्रतिकूल भाव से और अनुकूल भाव से नारद मुनि आगे बताते हैं, मुख्य बात यह है कि हमें पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, कृष्णा भावना भावित होना चाहिए, हमारा मन पूर्ण रूप से, नारद मुनि बता रहे हैं, तस्मात वैर बंधु ने निर्वैर्ण भयेन वा स्नेहात कामेन वा युंज्यात कथंश्चित इक्षते पृथक। शत्रुता या भक्ति भय स्नेह या विषय वासना द्वारा इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर एकाग्र करना है। मुख्य बात यह है कि मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं द माइंड शुड बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा, चाहे भय से चाहे द्वेष से चाहे प्रेम से स्नेह से मैत्री से, मन पूर्ण रूप से लगा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कृष्ण में मन लगाने से इतनी कृपा मिलती है, इसमें इतनी शक्ति है, अगर कोई कृष्ण की निंदा भी कर रहा है जो कि बहुत बड़ा अपराध है, उससे उसको बहुत दुष्कर्म का फल मिलता, लेकिन कृष्ण का नाम लेने से लगातार अपने आप अपने मन को कृष्ण में लगाने से उसके सारे पाप अपराध माफ हो जाते हैं, अगर कोई निरंतर ऐसा कर रहा है जैसे शिशुपाल या कंस। तो कृष्ण में कृष्ण के स्मरण की और कृष्ण में मन लगाने की इतनी शक्ति है। और नारद मुनि आगे कहते हैं कि नारद मुनि बताते हैं अपना विचार प्रकट करते हैं, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचारों में ऐसी गहरी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितने कि उसके प्रति शत्रुता के माध्यम से। जितना भगवान के प्रति एंटी फीलिंग रख के प्रतिकूल भाव से एब्जॉर्प्शन होता है, उतना अनुकूल भाव से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, प्रतिकूल भाव से तुरंत हो जाता है। हम ये अगर अपने जीवन में देखें, हमारे किसी प्रेमी का नाम लेते हैं तो इतनी एक्सटेसी नहीं आती, हमारे सामने किसी शत्रु का नाम ले दो तो सारे चेहरे पे हाव भाव तुरंत आ जाते हैं, है ना, पूरा माइंड एब्जॉर्ब होता है, उसका नाम मत लेना मेरे सामने, है ना, और प्रेमी का नाम ले लिया यानी कि तुरंत मूर्छित होंगे, इतनी हालत नहीं होती हमारे, अच्छा लगता है, लेकिन शत्रु का नाम सुनते ही एकदम पूरे शरीर में आग लग जाती है, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है शत्रुता के भाव में ज्यादा होती है। नारद मुनि कह रही हैं ऐसा मेरा विचार है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नारद मुनि ऐसे नम्रतावश कह रहे हैं, लेकिन विश्वनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ ऐसा होता है, ये प्रतिकूल भाव के ये प्रकृति है, लेकिन फिर भी हमें प्रतिकूल भाव से भक्ति नहीं करनी, क्योंकि भक्ति नहीं है वो, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से करनी है। फिर नारद मुनि जी एक एग्जाम्पल देते हैं, नारद मुनि कहते हैं एक मधुमक्खी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है। एक कीड़ा है दीवार में, उसमें थोड़ा सा छेद है, एक छोटा सा कीड़ा उसमें फंस गया और बाहर मधुमक्खी खड़ी है। कीड़े को भय है कि मैं बाहर निकला तो मधुमक्खी मुझे खा जाएगी। तो क्या है, भय और शत्रुता के कारण वो मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से वो स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। भय और शत्रुता से वो उस मधुमक्खी का चिंतन कर रहा है तो क्या बन गया, वो मधुमक्खी बन गया। इसी प्रकार यदि सारे बदजीव किसी तरह सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण का चिंतन करें तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। वे भगवान को चाहे पूज्य रूप से माने या शत्रु के रूप में, निरंतर उनका चिंतन करते रहने से उन सबों को आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। है ना, तो कंस को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई क्योंकि कंस निरंतर भगवान के रूप का चिंतन कर रहा है, भगवान के रूप का दर्शन कर रहा है भय से, लेकिन सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई, जैसे यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है। इसलिए चाहे असुर हो या देवता हो, मुख्य बात है अपने मन को कृष्ण में लगाना। अब हमारी स्थिति दोनों के बीच की है, ना हम असुर हैं कह सकते हैं पूर्ण रूप से, और देवी गुणों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और मन पूर्ण रूप से अभी लगता नहीं। भक्ति में आनंद तभी आएगा जब हम पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब्ड होंगे। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, आनंद एब्जॉर्प्शन का बाय प्रोडक्ट है। हम लोग इस संसार में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, वो तभी आएगा जब एब्जॉर्प्शन होगी, मन कृष्ण में लगा होगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए भगवद गीता के 8वें अध्याय में बताया जाता है कि अभ्यास करें इसका। यह साधना भक्ति का मतलब ही यही है कि इसका हम अभ्यास करें। अभ्यास योग युक्ते ना चेतसा ना अन्य गामिना, इस तरह का अभ्यास करें कि मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे, चेतना कहीं और ना जाए। और फिर क्या हो, परम पुरुषम दिव्यम पार्थम अनुचिंतयन, फिर यान्ति पार्थ अनुचिंतयन, फिर हम उस परम पुरुष को प्राप्त करेंगे इस प्रकार का चिंतन करते हुए। तो कैसे अभ्यास करें कि हमारा मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा रहे। तो इसलिए जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ढूंढ रहे हैं कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, साधकों को भी अपना हर कार्य, अपने हर विचार, अपनी हर इच्छा में ये ढूंढना चाहिए कृष्ण कहाँ है। हम फैक्ट्री में जा रहे हैं, पूछो कहाँ है कृष्ण, इस फैक्ट्री में कृष्ण कहाँ है, लाइए कृष्ण को। ऑफिस में जा रहे हैं, कृष्ण कहाँ है, लाइए। अपने घर में हैं, कृष्ण कहाँ है। हम अपनी साधना कर रहे हैं, कृष्ण कहाँ है, और इस कृष्ण को लाना है, उसको पूरा कृष्णा भाना भावित बनाना है उस कार्य को। भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि माँ में विशेष संशय, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे। भगवान कहते हैं तुमसे मन हैंडल नहीं होगा, ये मन मुझे अर्पित कर दो। हम मन हमें ऐसा घुमाता है, घूमते रह जाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, मन पता नहीं कहां कहां से घूमता रहता है, पता ही नहीं चलता है ना। तो हमारे सभी आचार्यगण बोलते हैं अगर हमारे जप में भाव नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, तो ये जप केवल नाम अक्षर है। और उदाहरण देते हैं बड़े भक्त, ये जैसा जप बिना भाव के, सेवा की भावना के, बिना एब्सेंट माइंडेड जो हम सेवा कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, वो खाली कैप्सूल के समान है ना। किसी डॉक्टर ने कैप्सूल लिख के दिए, बच्चे ने दवाई बीच में से निकाल दिए, खाली कैप्सूल खा रहा है, खूब दवाई, बीमारी ठीक होगी नहीं होगी। कई भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी 20 साल हो गए जप करते हुए, वैसे का वैसे ही हृदय है। क्योंकि हृदय को लगा ही नहीं रहे। अपने मन को भगवान में लगाएंगे ही नहीं तो मन कैसे शुद्ध होगा। चैंट एंड बी हैप्पी का मतलब है, हैप्पी कब होगा, जब चैंटिंग में एब्जॉर्ब होंगे, जब चैंटिंग में उपस्थित होंगे, प्रेजेंट माइंडेड होंगे, तब हैप्पी जरूर होंगे। एब्सेंट माइंडेड जब करेंगे तो हैप्पी कैसे हो जाएंगे। फिर हमें स्लोगन अजीब सा लगता है, ये स्लोगन कैसा है चैंट एंड बी हैप्पी का, नहीं, पूरा एब्जॉर्प्शन जा, यही भक्ति में सफलता ही है, मन को कृष्ण में लगाना। येन क्रेन प्रकार ने मना कृष्ण निवेशयत्। प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास कहते हैं मनेर प्राण कृष्णेर स्मरण, मन का जो जीवन है, मन का जो प्राण है, वो कृष्ण का स्मरण है। और जिस मन में कृष्ण का स्मरण नहीं है उसमें तो हमेशा भी चील और गिद्ध आएंगे और फिर उल्टे सीधे विचार रहेंगे। तो इसलिए हमें एक बिना हम जो भी सेवा करते हैं कहाँ है कृष्ण पूछना चाहिए, किसके लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, ये प्रचार कर रहा हूँ किसकी प्रसन्नता के लिए, ये सेवा कर रहा हूँ किसके लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, ये बार बार हमें याद दिलाना चाहिए। क्योंकि जो बद्ध जीव है उसकी आदत है कि हर कार्य के केंद्र में अपने आप को रखता है, और अपने आप को हटा के हमको कृष्ण को रखना है, पूछना है कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को लाना है, तभी हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होंगे और तभी हम इस भक्ति का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो ये फर्क है। अगर हम जो भक्त लोग अनुकूल भाव से अपने मन को कृष्ण में लगाते हैं तो हमेशा आनंद में रहते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। अभक्त लोग प्रतिकूल भाव से अपने मन को कृष्ण में रहते हैं, हमेशा भयभीत रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, जैसे कि कंस। तो इसलिए हम पूर्ण रूप से चाहे मर्जी भौतिक परिस्थितियां हों, हमारी भौतिक परिस्थितियां प्रहलाद महाराज की भौतिक परिस्थितियों से खराब नहीं हो सकती। तो यही प्रशिक्षण देना है अपने आप को, मन को ही प्रशिक्षित करना है कि हर परिस्थिति में हम मन को कृष्ण में लगा सके, याद दिलाते रहें कहाँ है कृष्ण, इस विचार में, इस कार्य में, इस इच्छा में कहाँ है कृष्ण, और लाना है कृष्ण को। और कलयुग में तो कृष्ण को अपने कार्य क्षेत्र में लाना बहुत आसान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पहला विषय था, प्रभुपाद इसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा आदि सभी जीव आए, क्षमा करें, ब्रह्मा शिव जी नारद मुनि और सभी चंद्र वरुण इंद्र सभी देवतागण चार कुमार ऋषिगण नारद जी ब्रह्मा जी शिव जी आए, है ना। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने आना है, अभी वो गाड़ी में ही है, गाड़ी से उतरा नहीं, तो जहां वो आएगा सारे के सारे अधिकारीगण वहां पहुंच जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के स्वागत के लिए। अभी प्राइम मिनिस्टर गाड़ी से बाहर नहीं निकला, लेकिन मालूम है गाड़ी में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इस गाड़ी में है। तो अभी भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन पूरी सृष्टि के जो महादेव हैं, जो चीफ इंजीनियर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की जिन्होंने रचना की, ब्रह्मा जी शिव जी स्वयं वहां पर उपस्थित हैं भगवान को रिसीव करने के लिए, है ना। तो एक प्रोटोकॉल है, यहाँ लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी इतने बड़े देव वो स्वयं उपस्थित हैं, क्योंकि आने वाले भी कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान, इसलिए वो आए, है ना। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारी दृष्टि है भगवान को देखने के लिए तो स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। सारे देवतागण कहाँ आ रहे हैं, कंस के कारागार में, क्यों, उनकी दृष्टि है, वो भगवान को वहां देख पा रहे हैं, है ना। तो स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी हमारी चेतना या हमारी दृष्टि। अक्सर लोग मंदिर में आकर ही भगवान के दर्शन कर पाते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मंदिर से बाहर जाके वो देख ही नहीं पाते भगवान को। नहीं, अगर हम दृष्टि विकसित करेंगे तो हर जगह हम भगवान को देख सकते हैं और हर जगह भगवान की स्तुति कर सकते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि भगवान की वो स्तुति करेंगे, अगले श्लोक से बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां शुरू होंगी, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान का जब गुणगान कर रहे हैं तो भगवान कहाँ है, देवकी के गर्भ में है। साधारणतः किसी भी जीवात्मा के लिए गर्भवास बहुत बड़ी सजा है, सभी शास्त्रों में इसकी निंदा की गई, भैया ऐसा कर्म मत करना कि दोबारा गर्भ में प्रवेश करना पड़े। लेकिन यहां भगवान मां के गर्भ में है तो उनका गुणगान किया जा रहा है। भागवतम के तीसरे स्कंद ने बताया कि जब शिशु मां के गर्भ में होता है कितने कष्ट पाता है, उल्टा लटका हुआ, मल मूत्र से घिरा हुआ, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, बहुत परेशान है बेचारा। और कोई भाग्यशाली जीव को पिछले 100 जन्म याद आते हैं तो वो मां के गर्भ के अंदर प्रार्थना करता है, मुझे बाहर निकाल दो। यहां भगवान गर्भ में है और बाहर से देवता लोग प्रार्थना करें जल्दी बाहर आ जाओ। ये भगवान की दिव्यता है। इसी प्रकार से भगवान के परम भक्त सुखदेव गोस्वामी भी जब अपनी मां के घर में थे वो भी बाहर नहीं आ रहे थे, 16 साल तक रहे, तो उनको बाहर निकालने के लिए स्वयं भगवान ने आगे प्रार्थना की, भैया बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं माया नहीं छुएगी तुम्हें, तब वो बाहर आए। तो ये भगवान और भगवान तभी कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य, भगवान के जन्म दिव्य है। तो सभी देवतागण स्तुति कर रहे हैं कि आप आइए और आपने अपने वचन को पूरा रखा। ब्रह्मा जी के पास ही पृथ्वी माता गई थी गौ बनकर कि मुझ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, और ब्रह्मा जी ऐसे सभी देवताओं की पार्टी को लेकर गए थे क्षीर सागर के तट पे, वहां जाके उन्होंने तपस्या की, मनन किया, और भगवान ने उनके हृदय में आवाज डाली कि मैं आने ही वाला हूँ। सभी देवताओं को बोला कि आप यदुवंश में जन्म ले लीजिए, प्रकट हो जाइए। तो वही फिर ब्रह्मा जी भगवान आने वाले हैं सभी देवताओं के साथ इस पे आते हैं। और फिर यहां पर बताया गया है देवा सानुचरे साकम गिरवी वृषण मेडयन। जो वृषण शब्द बहुत सुंदर है यहां पे, किसी को भी वर देने वाले भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी बहुत सुंदर एक पोएटिक इसके व्याख्या करते हैं। वो बोलते हैं वृषण का मतलब है जो कि एक बादल के समान है, जो कि आशीर्वादों के वरदानों की वर्षा करते हैं। और अब भगवान प्रकट होने वाले हैं अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं की अमृत की वर्षा करने वाले। तो भगवान सुंदर सुंदर लीलाओं की अमृत रूपी अमृत की वर्षा करेंगे। और ये पूरा जो 14 भुवन है, 14 लोक हैं, इनकी ये जो पूरा क्षेत्र है, इसके जो मुख्य कल्टीवेटर है, मुख्य कृषक हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। और शिव जी को बताया गया है कि मुख्य मोर हैं, जो कि जैसे ही बादल देखते हैं अपने पंख फैला के नाचना शुरू कर देते हैं। यहां बताया गया शिव जी भगवान का हमेशा गुणगान करते हैं, नाचते हैं। और नारद इत्यादि ऋषिगण वो चातक पक्षी हैं जो केवल वर्षा का जल ही पीते हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान आएंगे, उनकी लीलाओं की अमृत रूपी वर्षा होगी। और नारद मुनि जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है भगवान को प्रकट कराने में। नारद मुनि ने पूरा एक्सपेडाइट किया था प्रोसेस। कंस के हृदय में थोड़ी सी करुणा उत्पन्न हो रही थी। नारद मुनि ने कोई चांस नहीं लिया, विष्णु कभी भी आ सकते हैं, फटाफट मारो सबको, तुम्हारे पापा खड़ा जितनी जल्दी भरेगा भगवान उतनी जल्दी प्रकट होंगे, सुंदर लीला दिखाई देंगे, फटाफट करो फटाफट। तो नारद मुनि वेट कर रहे थे कब भगवान की लीलाएं प्रकट होंगे। तो नारद मुनि की तुलना ऋषियों की तुलना की गई चातक पक्षी के द्वारा, और सभी देवताओं की तुलना की गई उन हाथियों के द्वारा जो कि दावानल में फंसे हुए हैं। और ये दावानल है कंस और जरासंध इत्यादि असुरों का भय, उस दावानल। और जब हाथी भी देखते हैं ऐसे वर्षा हो रही है तो वो भी भाग के आएंगे इस दावानल से बचने के लिए। तो बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने वर्णन किया। और भगवान सबको वरदान देने वाले हैं, सभी देवतागण वहां पर इकट्ठे हैं। तो इसी अध्याय के 20वें श्लोक में प्रभुपाद अपने तात्पर्य में एक सुंदर बात लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, और कलयुग में भी भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और प्रभुपाद आगे बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन द वूम्ब ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है इस कृष्णा भावना भावित आंदोलन के गर्भ में। बहुत बड़ी बात है ये कि भगवान प्रकट हो रहे हैं हमारे इस आंदोलन के गर्भ में। तो यानी कि जिस प्रकार से भगवान वर्षण हैं, सबको वरदान दे रहे हैं, तो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन भी सबको वरदान देने के लिए है। हम देखते हैं जिस प्रकार से अभी यहाँ सभी देवतागण कारागार में आए, इसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु सची माता के घर में थे तो सभी देवतागण आए थे सची माता के आंगन में। और सची माता के आंगन में आके सब ने जय जयकार किया। काली वृंदावन ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस था, चैतन्य भागवत से हम पढ़ रहे हैं। जय जय ध्वनि हिला अंतर वदने, स्वपने पर आए जगन्नाथ मिश्र सची सुने। जैसे निमाई पंडित प्रकट हुए सची माता के घर में तो अनंत शेष ने जोर से बोले जय जय। तो जगन्नाथ मिश्र सची देवी को ऐसा लगा जैसे कोई सपना है। और फिर अवती न हई बिना ईश्वर जानिया, ब्रह्मा शिव आदि स्तुति करण आशिया। ये जानते हुए कि महा भगवान अब प्रकट हो गए हैं सची माता के घर में, ब्रह्मा और शिव जी वहां पर आ गए। अब आप ध्यान से सुनिए। भक्ति करी ब्रह्मादि देवेर सुन स्तुति, ये गोप्य श्रवण हये कृष्ण रति मति। बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। जो भी अब ब्रह्मा और शिव जी की स्तुतियों को सुनेगा श्रद्धा से, उसको क्या प्राप्त हो जाएगा? कृष्ण के प्रति रति, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो पूरा तो नहीं सुना पाएंगे, समय कम है, कुछ एक दो प्रयास सुनाएंगे। तो वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और गुणगान करते करते वो भगवान को बताते हैं कि आप अलग अलग अवतारों में कैसे प्रकट हुए। और फिर बताते हैं कि आपका जो अवतार कितना महत्वपूर्ण है, आप ये अवतार लेकर संकीर्तन पूर्ण है बा सकल संसार, घरे घरे हैबा प्रेमा भक्ति र प्रचार, पूरा विश्व को आप संकीर्तन से भर देंगे और घर घर में प्रेम भक्ति का प्रचार करेंगे। ये तो हमारा पाद पद्मा नित्य ध्यान करे तासबार प्रभावई अमंगल हरे। केवल आपके भक्तों के उपस्थिति मात्र से ही उनके चरण कमलों के द्वारा सारे के सारा अमंगल हर लिया जाता है। हाँ, ये तो है कि जो संकीर्तन में भाग लेते हैं। आगे बता रहे हैं, पाद तले खंडे पृथ्वी रा अमंगल दृष्टि मात्र दश दृक हय सुनिर्मल। भक्त लोग जब चलते हैं कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, तो जब हम पृथ्वी पे संकीर्तन निकालते हैं तो इस पृथ्वी का अमंगल समाप्त हो जाता है। कितना अमंगल हो रहा है चारों तरफ, पशु काटे जा रहे हैं, मदिरा पान हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। केवल एक ही मंगलमय कार्य क्या है, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन की। तो जब भक्त लोग चलते हैं तो इस पूरी पृथ्वी का अमंगल दूर हो जाता है, और जब भक्त लोग इधर देखते हैं चारों तरफ देखते हैं तो सारी सारी दिशाएं शुद्ध हो जाती हैं। और बहुत अली नाचिते स्वर्ग विघ्नाश हेना यश हेना नित्य हेना तोरदास। और नाचते नाचते अगर वो अपनी बाजुएं ऊपर कर लें तो स्वर्ग लोकों में जो अशुभ है अमंगल है वो खत्म हो जाता है। हमें से कई लोग ऐसा सुनते बोले इतना नहीं होता होगा ऐसे कैसे प्रभु निश्चित रूप से होता है, वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं निश्चित रूप से होता है, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। हरि नाम की महिमा को काल्पनिक मानना ये भी पांचवा नाम अपराध है। और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज इसमें टीका में बता रहे हैं कि स्वर्ग लोक में क्या विघ्न है, तो बोल रहे हैं स्वर्ग लोक में दो प्रकार के विघ्न है। नंबर एक विघ्न आता है असुरों के द्वारा, बार बार आ जाते हैं देवताओं को अपनी कुर्सी से हटा देते हैं, नंबर एक विघ्न। दूसरा विघ्न है कि वहां इतनी ज्यादा इंद्र तृप्ति की सुविधा है कि वो कृष्ण को भूल जाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के विघ्न समाप्त हो जाते हैं जब भक्त लोग कीर्तन करते हुए अपनी बाजू ऊपर कर दें, बस इसीलिए बाजू ऊपर करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये इतना सुंदर है, चैतन्य महाप्रभु का नाम इतना शुभ है। एक बारी परम पूजनीय जयप्रताप स्वामी महाराज बता रहे थे कि वो एक व्यक्ति से मिले जो कि 26 साल से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा था, किसी और संप्रदाय का था, और महाराज को बोला उसने कुछ लग नहीं रहा। महाराज बोले क्या करते, बोले हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूं। तो भाई महाराज ने पूछा आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बोलते हैं उनका मंत्र, बोले नहीं महाप्रभु ये कैसे कर रहे हो आप, प्रभुपाद जी ने बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उनको ये लिख कर दिया मंत्र, इसको लो और फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ऐसा किया, 3 महीने बाद महाराज फिर उस गांव में गए और गांव में बैठे थे, प्रोग्राम चल रहा था, वो व्यक्ति दूर से बाकी आया, हरी बोल जय हो, क्या बता दिया आपने मुझे, क्या बता दिया, नाचने लगा, बहुत कृपा कर दी, आहा। महाराज को देखा, उसकी इस एक्सटेसी को देख के मेरा विश्वास और बढ़ गया, है ना। तो ये है वास्तव में, ये जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, यही नारद जी आए श्रीवास ठाकुर, यही ब्रह्मा जी आए बाद में हरिदास ठाकुर के रूप में, और यही शिव जी आए अद्वैताचार्य जी के रूप में, पूरे पंच तत्व। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद देना चाहिए इन पंच तत्वों का जिन्होंने प्रेम को लुटा दिया। कृष्ण तो आए, प्रेम की जो पूरा ट्रंक था उस पर ताला लगा हुआ था, सील्ड था, इन्होंने सब सील बिल तोड़ दी, ऐसी की तैसी सील की, ऊपर ट्रंक खोला और पूरा प्रेम उठा उठा के बांट रहे हैं, और जितना बांट रहे हैं प्रेम बढ़ता जा रहा है ना। तो ये जो आंदोलन है जिस आंदोलन में हम भाग ले रहे हैं ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है। चैतन्य महाभाग भागवत में वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद भी ये महाप्रभु की लीला संकीर्तन लीला चल रही है और इस हम सब लोग इस संकीर्तन लीला में भाग ले रहे हैं। और क्योंकि इस संकीर्तन लीला में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, स्वयं नारद मुनि जी, ब्रह्मा जी, सभी देवतागण आते हैं इसमें भाग लेने के लिए। जब लंदन में रथ यात्रा चल रही थी तो ऊपर देखकर प्रभुपाद हंसने लगे। शिष्य ने पूछा क्यों हंस रहे हो, बोले नारद मुनि आए थे, बहुत खुश थे, बोले वाह इन मलेच्छों को भी टकला बना दिया, हरि नाम दे दिया। और लंदन मंदिर में अभी भी दो आसन खाली हैं, एक नारद मुनि जी के लिए, एक ब्रह्मा जी के लिए। प्रभुपाद कहते हैं वो आते हैं यहाँ पे, हमें दिखाई नहीं देते, वो आते हैं। सैन फ्रांसिस्को में जब रथयात्रा थी, रथयात्रा के बाद प्रभुपाद गाड़ी में बैठे तो अपने शिष्य से बोले, कुड यू सी गौर नेताई डांसिंग। वो शिष्य हैरान हो गए, हाँ बोलू ना बोलू क्या बोलू। प्रभुपाद के पास दृष्टि थी, देख रहे थे गौर नेताई आए नाचने के लिए। और प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस मूवमेंट इज बीइंग पर्सनली सुपरवाइज बाय चैतन्य महाप्रभु, ये आंदोलन व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण किया जा रहा है। तो हमें और फिर प्रभुपाद जी के तो अवतीर्ण की कितनी घोषणाएं हैं सभी शास्त्रों में। तो प्रभुपाद जी विशेष सेनापति भक्त हैं, प्रभु चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन चल रहा है। तो हमें क्या करना है, वर्षना, ये जो आंदोलन है वरदान देने वाला है। पूरा संसार दुखी है, प्रभुपाद कहते हैं प्रचार का अर्थ है दुर्भाग्यशालियों को सौभाग्यशाली बनाना, हरि नाम देना है। भक्तों के दर्शन करने मात्र से ही उनका दुर्भाग्य दूर हो जाता है, उनकी भक्ति शुरू हो जाती है, उनको अज्ञात सुकृति प्राप्त हो जाती है। अगर कोई भक्त का मजाक भी उड़ा रहा है उसको सुकृति प्राप्त हो गई। इसलिए भक्तों को पूरा दबंग होकर प्रचार करना चाहिए, हमने इस सौभाग्य को बांटना है। और इससे क्या है, सभी देवतागण प्रसन्न होते हैं और चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो हम यहीं पे विराम देंगे, लेकिन मुख्यतः दो बातें आज हम इस श्लोक जो हमने चर्चा की, पहला कि हम अनुकूल भाव से भक्ति कर रहे हैं लेकिन अपने मन को पूर्ण रूप से अभी लीन नहीं कर पाए हैं। तो मन को पूर्ण रूप से हमें एब्जॉर्ब करना है। और ये एब्जॉर्प्शन कैसे करनी है, हम जो भी कार्य करें, जो भी सेवा करें, उसको कृष्ण के केंद्र में रखें। पूछें अपने आप से कृष्ण कहाँ है, ये इंट्रोस्पेक्शन करना है। जप करें तो कृष्ण को केंद्र में रखें, कीर्तन करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो कृष्ण को केंद्र में लाने का यही अभ्यास योग है, यही साधना भक्ति है कि मन को कृष्ण में लगाने का पूरा प्रयास। और दूसरा, हम इस संकीर्तन आंदोलन में हैं और कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, और प्रभुपाद कह रहे इसी कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन में कृष्ण प्रकट हुए हैं। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जैसे सेनापति भक्त के अंडर हैं, तो अपने सौभाग्य को पहचाने और इस सौभाग्य को बांटे, खूब प्रचार करें। भक्ति सिद्धांत सोई ठाकुर महाराज ने कहा था प्रभुपाद को, जो आपके इस मिशन में, आपके इस आंदोलन में मदद करेगा उसको विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसलिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को पत्र लिखते थे, जो पुस्तक वितरण करते थे, आपको मेरी गुरु महाराज की कृपा लाखों लाखों गुणा प्राप्त होगी। तो प्रभुपाद की हम कैसे सहायता कर सकते हैं, पुस्तक वितरण करके, संकीर्तन के द्वारा, खूब प्रचार के द्वारा, भक्तों की सेवा करके, और प्रभुपाद को हम प्रसन्न कर सकते हैं और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न या टिप्पणी, एनी क्वेश्चंस? यस फ्रेंड्स,
हरे कृष्णा भगवान, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लेक्चर। तो जी, जैसे हम इसके ट्रांसलेशन में देखते हैं, शुरू में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी भी आते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए, और जब भगवान की उम्र थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद में जब हम देखते हैं ब्रह्म विमोहन लीला भी होती है, तो ब्रह्मा जी के टाइम के हिसाब से तो वो कुछ ही क्षण बीतते हैं। तो अभी तो उनको सामने दिख रहे हैं कि भगवान अवतार ले रहे हैं, और थोड़ी देर बाद ही भूल जाते हैं कि, तो इसे कैसे समझे, मुझे
समझ भी नहीं सकते और समझना भी नहीं चाहिए। ये लीला है भगवान की, और भगवान ने अपने महिमा दिखाने के लिए अपने भक्त को विमोहित कर दिया, योग माया में डाल दिया। महामाया में नहीं थे ब्रह्मा जी, योग माया में थे। तो लीला, तभी तो इतनी सुंदर लीला आई। और फिर ब्रह्मा जी को लगा अपराध किया है, तो ब्रह्मा जी गए अंतरद्वीप में, गौरांग महाप्रभु के लिए तपस्या की, गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए और फिर बोले आप हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट होंगे। ऐसा होता ही ना, तो ब्रह्मा जी वो तपस्या भी ना करते। हरिदास ठाकुर जी गाते थे, कैसे याद है, ये लीला है भगवान की। और किसी का क्वेश्चंस? ठीक है, तो क्या दो लेसन्स लेके जा रहे हैं हम? पहला, हाँ जी, कोई एक हाथ खड़ा करके बोले। हाँ माता जी, कैसे करेंगे? नहीं नहीं हमें कैसे कैसे अपने आप को चेक करेंगे? कहाँ है कृष्ण को ढूंढना है और उनको लाना है सेंटर में, क्योंकि हमारा मन बहुत चीटर है, हम फिर कहीं और ले जाते हैं, फिर पकड़ के लाना है। हमारे पास इतने विषय हैं सोचने के लिए, परेशान होने के लिए, कि हम कृष्ण को भूल जाते हैं। फिर कृष्ण को लाना है, फिर कृष्ण को लाना है। और दूसरा, दूसरा क्या है? हाँ, खूब शामिल हों, खूब बांटें, समय बहुत कम है, अपना भी सौभाग्य और बढ़ेगा जितना हम बांटेंगे, और लोग जो दुर्भाग्यशाली हैं वो सौभाग्यशाली बनेंगे। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी।